किरदार और इखलाकियत में क्या फ़र्क है, और एक उस्ताद के लिए तुलबा की किरदार साजी में खुद अपने लिए इन दोनों में से किसको ज्यादा चुनना मुनासिब है?
ये देखिए, अखलाकियात ही है जो असल में जिस वक्त इंसान के रवैये और अमल में ढलती हैं तो किरदार बन जाती है। यानी इनमें कोई तजाद की निस्बत नहीं है। एक अखलाकी उसूल है कि आपको सच बोलना है, जिस वक्त सच्चाई आपका तर्ज अमल बन जाती है तो ये आपका किरदार है। एक अखलाकी उसूल है कि आपको किसी की जान माल आबरू पर ज्यादती नहीं करनी, ये एक अखलाकी उसूल है ना। मसलन कुरान मजीद ने एक मुकाम पर बुनियादी अखलाकियात को जमा कर दिया है, ये बताया है कि तीन मुस्बत हैं तीन मनफी हैं बुनियादी अखलाकियात को। दिलचस्प बात यह है कि यही वो कुरान की आयत है जो हमारे यहाँ हर खुतबे में पढ़ी जाती है। जिन लोगों ने भी इसको वहां रखा है, ये सोच कर रखा है कि ये बुनियादी अखलाकियात का बयान है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान व इताए ज़िल कुर्बा। जो शख्स भी कभी जुमा पढ़ने के लिए गया है उसने बारहा ये आयत सुनी होगी। कुरान मजीद ने तीन बुनियादी चीजें बताई हैं कि परवरदिगार तुम्हारा खालिक तुमसे तीन चीजों का तकाजा करता है। पहले ये कि तुम्हारी जिंदगी के एक एक पहलू में अदल होना चाहिए। ये अदल कोई मामूली चीज नहीं है। ये मियाँ बीवी के रिश्ते में, वालदैन के रिश्ते में, अज़्ज़ा अक़रबा के साथ, पड़ोसियों के साथ, माशरे में, बैसियत मजमू ताल्लुकात में, सियासत में, तहजीबी इकदार में। जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि हर जगह आपके हाथ में एक तराजू है और आप अदल करने के लिए खड़े। तो पहली बुनियादी चीज, और ये आलमगीर है, यानी जस्टिस अदल ये वो चीज नहीं है कि जिसके बारे में कोई बहस हो जाएगी। अब यहां ये ख्याल ना कीजिएगा कि बाज औकात किसी चीज के इतलाक में इख्तलाफ हो जाता है, वो इतलाकी इख्तलाफ है। बैसियत मजमुई आप अमेरिका में खड़े हों, आप मराकश में खड़े हों, आप इंडोनेशिया में खड़े हों, अदल और जस्टिस एक बुनियादी कदर के तौर पर या एक आलमगीर कदर के तौर पर जेर बहस आए। फिर इससे आगे एहसान, यानी आपने सिर्फ हक नहीं देना, ठीक तराजू से तोल के जो कुछ उसका बनता है वो नहीं, इससे आगे बढ़कर इशार कर रवैया इख्तियार करना। इंसानी मुआशरत का हुस्न एहसान है, और फिर उस एहसान की एक फरा को मुस्तकिल हिदायत बना दिया कि अल्लाह ताला ने जो नज़म बनाया है उसमें आपके करीबी रिश्तेदार होते हैं, तो ये दर हकीकत आपके हुस्न सलूक के हकदार है। वह इताए ज़िल कुर्बा, आपको जो माल अल्लाह ताला ने दिया है आपको उस माल में इनको हकदार मानना है। ये आपकी इनायत नहीं है कि आपने अपने किसी गरीब रिश्तेदार की मदद कर दी, असल में ये उसका हक था जो आपकी अमानत में दिया गया था, आपने वो अदा किया। कुरान ने इसको इताए ज़िल कुर्बा के अल्फाज में अदा किया। तो ये तीन बुनियादी चीजें आप देखिए उसके उलट, यानी वो चीजें जो नहीं करनी। यन्हा अनिल फहशा, यानी जिनसी अनारकी के करीब मत जाओ। अल्लाह ताला ने जो नज्म बना दिया है जिसके तहत खानदान बनता है, मियाँ बीवी का रिश्ता कायम होता है, एक दूसरे के साथ वफादारी का ताल्लुक पैदा होता है, इसको तोड़ने वाली किसी चीज के करीब मत जाओ। मुनकर, यानी वो चीजें जो हक तलफी की नौयत की, जिनको इंसानी फितरत कभी कबूल नहीं करती, किसी का हक मार लेना, मिलावट करना, वो सब चीजें। और आखिरी चीज क्या है? सरकशी, बलबग, यानी किसी की जान माल आबरू के खिलाफ ज्यादती करना। अगर आप गौर करें तो आलमगीर अखलाकियात के बुनियादी उसूल यही, इन्हीं पर सारी की सारी अखलाकियात खड़ी। अच्छा, अब इनकी बुनियाद पर समाजी अकदार वजूद में आती, यानी अदल के अकदार होंगे, एहसान के अकदार होंगे, इसार के तरीके होंगे, इनमें माशरों में इख्तलाफ हो जाता है।
ठीक,
मैंने जिसकी मिसाल दी कि बड़ों का अदब व एहतराम एक कदर है, लेकिन उसका जहूर कैसे होगा? एक माशरा यह कहेगा कि उनके सामने दोजानू बैठने से जोर होता है, अगर आप आलती पालती मार के बैठ गए तो ये बेदबी हो जाएगी। तो ये वो चीज नहीं है कि जिसमें लड़ना चाहिए, इसमें समाजी अकदार, तहजीबी रवायात, आपके माशरे का, आपकी तहजीब का क्या रवैया है इस मामले में, ये बड़ा बुनियादी किरदार अदा करता है। और मैंने अर्ज किया कि आलमी अखलाकियात ने बहुत से मसाइल पैदा कर दिए। तो इस तरतीब से अगर आप बच्चों को एजुकेट करें, तालिब इल्मों में इसका शऊर पैदा करें, और फिर उनको ये बताएं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है कि आप गीबत कर रहे हैं, आप चुगली खा रहे हैं, आप किसी चीज पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे यहाँ आप देखिए हमारी सियासत में इल्जाम तराशी फन बनी है इस पिछले अरसे के दौरान
जी,
और ये नहीं है कि उसमें किसी एक गिरोह का किरदार नहीं, सब मिलकर यही किरदार अदा कर रहे हैं। हमने इस फन में कमाल हासिल किया है, जबकि اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ جرائم ہیں جو قابل معافی نہیں ہے. آپ بھی سورہ حجرات کو دیکھیں, اس میں غیبت پر کیا گفتگو کی ہے, اس میں تمسخر پر کیا گفتگو کی ہے. ہمارے ہاں
اس میں بلا تحقیق بات آگے بڑھانے,
دوسروں کا مذاق اڑانا یہ فن بن چکا ہے. اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ لا یسکر قوم من قوم, اور کتنی خوبصورت تعبیر اس نے اختیار کی ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ جس کے ساتھ تم یہ معاملہ کر رہے ہو وہ تم سے کہیں خدا کی نگاہ میں بہتر ہو. تمہارے معیارات کیا ہیں؟ یہ شعوب قبائل, یہ مختلف گروہ, یہ جماعتیں, یہ خدا نے کیوں بننے دی؟ کہا ہے نا
جی
انا جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, اور پھر انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو یہ جو اخلاقی اصول ہے, آپ چھوٹی سی بات دیکھیے, میں نے دیکھا علماء فضلاء یونیورسٹیوں کے اساتذہ وہ سیاسی معاملات میں گفتگو کر رہے ہیں اور مختلف پارٹیوں کے نام رکھ رہے ہیں. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ تناوز بالالقاب ہے, یعنی ہم جب کسی پہ تنقید کرتے ہیں
جی جی جی
تو ایک چیز مجھے پسند نہیں ہے اپنے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہ اخلاقی اصول بتایا ہے کہ جس نام کو میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا آپ میرا وہ نام نہیں رکھ سکتے. آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں, چھوٹی سی چیز ہے لیکن یہ بہت بڑی چیز ہے. تو بڑی حساسیت کے ساتھ ان تمام چیزوں کا شعور ہمیں اپنے بچوں میں پیدا کرنا چاہیے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک معاملے میں ذرا سا اختلاف ہوا لوگ گالیاں دینے آ جاتے ہیں, جس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں, یہ ہمارے اس سماجی شعور کی پستی کا اظہار ہے.